ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद अध्याय पांच श्लोक संख्या 56 और 57। ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा बाला अदूषित धियो द्वंद्वरामेरिते हिते पर्युपासत राजेन्द्रा तन्नयस्ता हृदये क्षणा तानः करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ते वे तू निसंदेह तत् गौरवात् प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से उनके भक्त होने के कारण सर्वे वे सभी त्यक्त त्याग क्रीड़ा परिच्छदाहा खेलने के खिलौने बाला लड़के अदूषित धिया जिनकी बुद्धि अपने पिताओं के समान दूषित नहीं हुई द्वंद्व द्वैत भाव में आराम आनंद लेने वाले यथाशण तथा अमरक जैसे शिक्षक इरिता उपदेशों द्वारा इहितय तथा कार्यों से पर्युपासत चारों ओर बैठ गए राज इंद्र हे राजा युधिष्ठिर तथा उसको निसत त्याग करके हृदय इक्षणाहा अपने हृदय तथा नेत्र तान उनको आहा बोला करुणाहा अत्यंत दयालु मैत्रहा असली मित्र महाभागवतः अत्यंत पूज्य भक्त असुरहा यद्यपि असुर पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज। अनुवाद रहिए। हे राजा युधिष्ठिर सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तात्पर्य सुनिए। बाला अदूषित धिया पद बताता है कि बच्चे अल्पायु होने के कारण भौतिकतावादी जीवन से उतने दूषित नहीं थे जितने कि उनके पिता। अतः प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकतावादी जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि शण तथा अमर्क सारे बालकों को धर्म अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकतावादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बच्चे अधिक दूषित नहीं हुए थे। अतएव वे कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रहलाद महाराज से सुनने के लिए उत्सुक थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों में गुरुकुल को अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत के विषय में शिक्षा दी जाती है। वे अपने अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो इसकी संभावना बहुत न्यून रह जाती है कि वे प्रकृति के गुणों द्वारा जीत लिए जाएंगे। तो यह अध्याय जिसके लिए आखिरी श्लोक हैं, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ने भी प्रचार शुरू किया। किसी भी भक्त का चरित्र पूरा नहीं होता जब तक कि वो प्रचार ना करे। और जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को खेलने में कोई रुचि नहीं है। जैसे प्रभु बताते हैं श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस का मतलब है कि आज यदि हम भौतिकवादी जीवन को त्यागते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तो आगे हमें शाश्वत आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट, आज इन्वेस्टमेंट। और प्रेयस का मतलब है कि अभी मजा करो और बाद में चाहे हमें कितने कष्ट झेलने पड़े, 84 लाख योनियों में या नरक में भी जा सकते हैं, तो वो प्रेयस आज अभी इंस्टेंट अभी चाहिए, बस फायदा अभी मजा मिलना चाहिए, बाद में चाहे कितने कष्ट मिले। तो जो भक्त होते हैं वो श्रेयस को अपनाते हैं, प्रेयस को नहीं। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की खेलने में कोई रुचि नहीं है, उन्होंने अपने खेल खिलौने उसमें कोई रुचि नहीं है। और इसी प्रकार से उनके जो सहपाठी हैं उनके अंदर भी इसी प्रकार की रुचि जागृत कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। जैसे थोड़ा समय मिलता है तो उन्होंने प्रचार का मौका ढूंढ लिया उनको बताने का। यदि इन खेल खिलौनों को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति फिर एक दिन खुद ही माया के हाथ का खिलौना बन जाता है। ये भौतिक संसार में जितनी भी गतिविधियां हैं ये सब क्या है, खेल खिलौनों की जैसे ही हैं। असारता ना, आध्यात्मिक जीवन की सारता और भौतिक जीवन की असारता, उसमें कोई सार नहीं है। ऐसे नहीं खाली बच्चे ही खेल खिलौने से खेलते हैं, आध्यात्मिकता के अतिरिक्त जितने भी कार्य हैं वो सब खेल खिलौनों से खेलने के जैसे ही। जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो जो बड़े हैं वो भी खेल रहे हैं, उनके खेल खिलौने दूसरे हैं, बच्चों के खेल खिलौने दूसरे हैं, लेकिन वो सभी खेल खिलौने ही हैं। यदि भगवान की सेवा में नहीं लगता है कोई और आध्यात्मिकता को नहीं अपनाता है तो खेल खिलौने के जैसे ही है। तो प्रचार का जो महत्व है इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। उस समय तो सतयुग था, तो सतयुग में भी प्रहलाद महाराज देखिए प्रचार करने के लिए कितने आतुर हैं। असुर कुल में जन्म हुआ और तो ठीक है, अपने सहपाठियों को भी प्रचार करते हैं, सबसे अच्छा मौका है। तो अभी तो कलयुग है, अभी तो कलयुग में तो अभी क्या बोलें असुर के बारे में, ज्यादातर जनता तो असुर ही है प्रभुपाद के अनुसार। तो बोलते हैं दो तरह के लोग हैं बस इस संसार में, एक भक्त और दूसरे अभक्त। तो जो अभक्त हैं वो असुर ही हैं, असुर बोलें या अभक्त बोलें। असुर थोड़ा कठोर शब्द है, अगर थोड़ा माइल्डली बोलें तो अभक्त बोल सकते हैं। तो अभी तो प्रचार का बहुत अवसर है कलयुग में। तो हमारा जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन या इस्कॉन संस्था जो कि चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने स्थापना की, इस हरे कृष्ण आंदोलन की संकीर्तन आंदोलन, ये प्रचार का आंदोलन है। जो शुद्ध भक्त होता है, यानी कि जो भक्त शुद्ध भक्त का मतलब ये नहीं कि उसको कई साल लगेंगे शुद्ध होने में, शुद्ध भक्त मतलब इसने शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को अपना लिया है और भौतिकता को उसने त्यागना शुरू कर दिया है, त्याग दिया है ना। जैसे एक व्यक्ति बीमार होता है तो जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको आईसीयू में डाल देते हैं, तो आईसीयू में डालते हैं तो फिर वो कुछ दिनों के बाद जब उसकी हालत कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाती है फिर उसको वार्ड में ले आते हैं। वार्ड में जाने के बाद भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसका जो बीमारी थी ऑलमोस्ट निकल गई है, कंट्रोल में आ गई है, और फिर डॉक्टर उसको कहता ठीक है अभी आप छुट्टी आपकी डिस्चार्ज कर दिया, अभी आप घर जा सकते हो, लेकिन साथ में इतना लंबा पर्चा लिख के देता है ये दवाइयाँ खाते रहना। तो भाई जब ठीक हो गया तो मैं दवाइयाँ क्यों खाते रहूँ, मेरे को तो आप डिस्चार्ज कर रहे हो, फिर ये इतना लंबा ये दवाइयों का तामझाम क्यों। ठीक हो गया मतलब अभी बीमारी निकल गई है, थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन बाकी है, वो ये दवाई खाने से निकल जाएगा। इसी प्रकार जिसने शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को अपना लिया है और भौतिकता को त्याग दिया है, अभी जो पुराना कंटेमिनेशन है वो धीरे धीरे ये शुद्ध भक्ति करने से निकल जाएगा, भक्ति करने से भगवान की, तो वो शुद्ध भक्त कहलाता है। तो जो भक्त होता है वास्तव में वो अवश्य प्रचार करेगा, वो प्रचार करे बिना रह नहीं सकता। जैसे जब गागर भर जाती है तो फिर वो छलकती है ना, तो इसी प्रकार से जो जिसको पता लग गया इसका स्वाद आ रहा है, जिसको उसको रुचि हो गई, तो फिर वो औरों को बताने की उसकी इच्छा होती है, क्यों ना बताएं औरों को, कंपैशन, उसकी दया जागृत हो जाती है। शुरू में हो सकता है कि ये दया जागृत ना हो, शुरू में तो हम क्योंकि हमारे को आदेश मिला है तो हमें इसलिए प्रचार करना है, निर्देश मिला है, श्री श्री राधा राधिकर मन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो कहने का भाव यह है कि प्रचार बहुत आवश्यक है। जब हम सेवा की बात करते हैं, सेवा का मतलब प्रचार, और कोई सेवा है ही नहीं प्रचार के अतिरिक्त। ये पूरा जो आंदोलन है केवल प्रचार के लिए, और जितनी भी सेवाएं हैं वो सब इस प्रचार को सहयोग करने के लिए, चाहे पुजारी दिया ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं वही प्रचार है, कोई झाड़ लगा रहा है वही प्रचार है, कोई कुकिंग कर रहा है वही प्रचार है। क्यों? क्योंकि सारी सेवाएं प्रचार को सपोर्ट करने के लिए हैं। जैसे फौजी जाता है लड़ने फ्रंट पे, तो एक फौजी तो बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रहा है हाथ में हथियार लेके, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे बहुत सारा स्टाफ होता है, वो सब फौजी कहलाते हैं। आर्म सर्विसेज में है जी, वो चाहे डॉक्टर हो वो भी फौजी है, उसको भी रैंक मिला होता है, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल और बहुत रहेंगे ना, लेकिन वो डॉक्टर होता है, वो तो बंदूक नहीं चलाता, उसको ट्रेनिंग होती है पर वो दूसरे काम करता है। सब किस लिए है? वो जो फ्रंट में जो लड़ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो सारे फौजी हैं। इसी प्रकार से जो संस्था है हमारी, इस्कॉन संस्था या जो हमारा आंदोलन है, ये सारे हमारे आचार्य इसी आंदोलन में, प्रचार का आंदोलन है केवल। स्वयं भगवान आते हैं देखिए प्रचार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ना, तो प्रचार करने के लिए तो आते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है इसका मतलब वो भगवान के इस आंदोलन में भगवान का सहयोग कर रहा है। हर एक व्यक्ति चाहे वो कुछ भी सेवा कर रहा हो वो प्रचारक है, वो प्रचार कर रहा है, तो प्रचार की भावना को विकसित करना चाहिए। तो उसके लिए दया बहुत आवश्यक है। ये संसार दुखाले है तो क्या बोला, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जैसे हमें लग रहा है कि संसार दुखाले, यदि हमारे को लग रहा है और हमें ये दुखों से जो है इसका समझ में आ गया है, तो फिर हमें औरों को बताना चाहिए, क्योंकि औरों को भी अपने समझना चाहिए ना, तो औरों को बताना चाहिए, उनको भी संसार के दुखों से बचाने में उनकी सहायता करनी चाहिए बचने में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। बहुत सारे कोट हैं प्रभुपाद की इस बात के ऊपर, भागवतम में जगह जगह प्रभुपाद ने विभिन्न तात्पर्य बताया कि ये सबसे उत्तम कल्याण कार्य है। लोग बात करते हैं समाज सेवा की, तो प्रचार से बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है। आप हमेशा के लिए उसके दुखों का अंत हो जाएगा यदि ये भगवान की सेवा में लगता है तो। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करना, ये है सबसे उत्तम कल्याण कार्य, बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। तो जो वास्तविक जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के लक्षण क्या है? ब्राह्मण जो है वो सभी पर दयालु होता है, दया, पर यह दया स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है मैं किसी पूछ के दया करूंगा। ठीक है हम एक संस्था में हैं तो उसके कुछ नियम है, उसकी मर्यादा को तो बना के रखना है, लेकिन दया स्वाभाविक है, हमें प्रचार करना चाहिए। किसी प्रचार का मतलब है किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कृष्ण की ओर ले जाना, बस बड़ा साधारण सी बात है। और उसके लिए लिखा है कि कोई बहुत एक्टिव टीचर भी हो सकता है और कोई ऐसा टीचर भी हो सकता है जो कोई बोलता ही नहीं, तो वो भी टीचर हो सकता है, प्रचारक हो सकता है। तो जो ब्राह्मण है वो बड़ा दयालु होता है। वेदों का सार जो है वो सबको बताता है। वेदों का सार क्या है? कृष्ण, एक शब्द है वेदों का सार, श्री कृष्ण। तो किस प्रकार से भगवान की ओर किसी व्यक्ति को ले जाएं, थोड़ा सा सही तो प्रचार है। और प्रचारक जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, जैसे भगवान ने बताया बहुत गीता में। तो बिना किसी भेदभाव के, शत्रु मित्र का विचार किए बिना, समभाव से सभी को प्रचार करना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको बताऊंगा इसको नहीं बताऊंगा। शत्रु मित्र को बताने का तरीका अलग हो सकता है, जो डायरेक्ट नहीं आते तो उनको इनडायरेक्टली किसी प्रकार से अज्ञात स्वीकृति मिले, कुछ भी मिले, किसी प्रकार से वो भगवान की सेवा से जुड़े, उसका भगवान के साथ में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कृष्ण के साथ। वो किस तरह से हो सकता है ना? जैसे संकीर्तन निकालते हैं हम लोग, तो संकीर्तन बाहर निकाल रहे हैं तो ये थोड़ा होता है नहीं भाई जो भक्त खाली वही सुनेंगे और जो देशी लोग हैं वो नहीं सुनेंगे, सभी सुनते हैं। वो वगैरह यहां तक कि पेड़ पौधे और जो पशु हैं वो भी सुनते हैं, उनका भी कल्याण होता है। इस पर वगैरह संकीर्तन और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे जो है कारगर उपाय है, तरीका है प्रचार करने का। कृष्णा भावनामृत का मतलब है कि स्वयं तो करना है सबसे पहले, बिना स्वयं करे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे प्रचार, प्रश्न नहीं उठता। स्वयं करना है, उसके बाद और लोगों को कृष्णा भावनामृत में लाना है, और जो लोग हमारे साथ हैं उनका ख्याल रखना, ये कृष्णा भावनामृत। तो प्रचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु का जो आंदोलन है वो प्रचार का आंदोलन है। जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, कह रहे मेरी आज्ञा है आप गुरु बन जाओ, गुरु भक्त बनो और प्रचार करो। भारत भूमि ले होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, जन्म सार्थक करी मतलब कि अपना जन्म सार्थक करो, यानी कि पहले स्वयं इसको अपनाओ और फिर परोपकार करो, और जन्म सार्थक करी कर परोपकार, परोपकार करके अपना जन्म सार्थक करो, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जब तक भक्त प्रचार नहीं करता तब तक भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति शांत जी कहते हैं कि जो निर्जन भजन करता है, खाली अपना उद्धार के बारे में सोचता है, वो तो धोखा है, स्वयं को धोखा दे रहा है। वैष्णव के नाम का जो कविता उन्होंने लिखी है उसमें बड़े सुंदर तरीके से समझाया है इस बात को। तो निर्जन भजन नहीं, प्रचार जो है वो करना बहुत जरूरी है। जो शत्रु हैं जो भगवान के, वो हमेशा द्वेष में भगवान का ध्यान करते हैं, और केवल इतना हमेशा निरंतर ये ध्यान करते, कंस है शिशुपाल है, तो केवल उतना करने मात्र से जो है क्या होता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो जो व्यक्ति भगवान की सारी कठिनाइयों को झेल करके भगवान के संदेश का, भगवान का गुणगान करता है, प्रचार करता है, तो उसकी मुक्ति तो निश्चित है, प्रभुपाद कहते हैं। और मुक्ति निश्चित क्या प्रभुपाद कहते हैं, वो ऑलरेडी मुक्त है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 72 श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद समझा रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, कि जो भक्ति में लगा है, सेवा में लगा है, वो इस भौतिक संसार में है ही नहीं, वो तो भगवत धाम में ही है। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा में और भगवत धाम के बीच में कोई अंतर नहीं, दोनों चरम पद है, परम पद है। तो प्रचार जो है वो बहुत आवश्यक है, उसके बिना एक भक्त का चरित्र पूरा नहीं होता। प्रत्येक शिष्य कर्तव्य बनता है कि वो गुरु का सहयोग करे, अपने गुरु का प्रचार करके। तो जो परिपक्व भक्त हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रचार करें। इस संसार में लोग दुखी हैं केवल कृष्ण भावना मृत की कमी की वजह से, और किसी कमी की वजह से संसार में दुख नहीं है। यदि दुख है तो उसकी जो रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है, वो है कृष्ण भावना मृत की कमी। तो सारे वेदों का निष्कर्ष है कि भावतम के 8वें स्कंद के 7वें श्लोक के 40 तत्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि सारे वेदों का निष्कर्ष है प्रचार करना। सारे वेदों का निष्कर्ष यह है कि प्रचार जो है वो सबसे उत्तम कल्याण कर रहे हैं। प्रभुपाद बहुत जोर इस बात को बार बार रिपीट किया है प्रभुपाद ने। बाकी जितने भी कल्याण कर रहे हैं वो तो इस शरीर के साथ में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यदि हमने किसी को प्रचार किया, किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी भक्ति भी करी, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड भी, तो वो उसकी परमानेंट शाश्वत रहेगी उसके साथ, और वो एक दिन अपना सर दिखाएगी, उसको इस दुखाले भौतिक संसार से बाहर निकलने में उसकी मदद करेगी। तो उससे बड़ा कल्याणकारी कोई नहीं है। आप किसी को भोजन दो, किसी को कपड़ा दो, कुछ भी दो, वो सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। बार बार उसको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये जो भक्ति यदि आपने किसी को कृष्ण की ओर लगाया, कृष्ण की ओर चलने में उसकी मदद की, वो उसको हमेशा उसके काम आएगी, चाहे वो किसी भी योनि में कहीं भी जाए, लेकिन उसको काम आएगी। तो इसलिए इस प्रचार को जो है, इसमें व्यक्ति को पूरा अपना ध्यान लगाना चाहिए। और उसको करने से पहले स्वयं तो करेगा ही, वो वरना प्रचार कर ही नहीं सकता। जब बोलते हैं प्रचार करो, मतलब पहले स्वयं करो, वो उसमें निहित है। बिना स्वयं करे कैसे कोई व्यक्ति प्रचार करेगा, कर नहीं सकता। जब प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज द सेंस, प्रचार ही सार है। तो जो चार जो मुख्य मुख्य प्रिंसिपल हम दोहराते हैं बार बार, आप देखिए उनका ज्यादा जोर प्रचार के ऊपर ही है। तो प्रीचिंग इज द सेंस, और प्रचार कैसे करना है, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकों के शास्त्रों के आधार पर। बुक्स मतलब प्रभुपाद बुक्स और शास्त्र। ऐसे नहीं कि अपने मन माने ढंग से प्रचार करना है, वो कहलाती है इंडिपेंडेंट प्रीचिंग, मन माने ढंग से। जो भी प्रचार है वो प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, हम क्योंकि इस्कॉन में हैं तो प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार वो प्रचार होना चाहिए, शास्त्रों पर आधारित। नहीं तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी केवल। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते। यदि शास्त्रों के आधार पर कुछ भी हमारी भक्ति, हमारी साधना या हमारा प्रचार वो शास्त्रों के आधार पर नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि की विधि बिना, पांच रात्रि की विधि आर्ष विग्रह की सेवा करने के लिए, यदि ये सारा कार्यक्रम इन शास्त्रों के आधार पर नहीं है तो क्या होगा, एकांत की हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते, वो केवल उत्पात मचाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। इसलिए कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। फिर यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हर चीज का उपयोग करो जो होने योग्य है, उपयोग होने योग्य है भगवान की सेवा में, प्रचार में, प्रभुपाद ने करके दिखाया। और प्यूरिटी इज द फोर्स, ये प्यूरिटी इज द फोर्स भी, ये भी प्रचार में सबसे अधिक आवश्यकता है इसकी। प्यूरिटी एक तो हमारी आंतरिक प्यूरिटी, अंदर से हम कितने शुद्ध हैं, वो हम होंगे भक्ति के साधना से और भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करने से, दृढ़ता के साथ में। और दूसरा प्यूरिटी का मतलब होता है कि जो हमें संदेश पीछे से मिला है वो बिना किसी मिलावट के एज इट इज आगे देना, प्यूरिटी इज अ फोर्स। जब हम एज इट इज देंगे तब फोर्स, तब वो दूसरे व्यक्ति के हृदय को छुएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी है, उसको प्योर रखना है, प्यूरिटी। तो ये चारों नियम भी प्रभुपाद जो है ये इंगित करते हैं प्रचार की ओर। साधना में भी इनका विशेष महत्व है, लेकिन प्रचार में इनका मुख्य महत्व है। तो प्रचार का मतलब है दया, कंपैशन। बिना दया के, जैसे हम बता रहे हैं, कल्याण की भावना रखते थे। प्रहलाद महाराज जो हैं उनके कल्याण की कामना करते थे। ये कल्याण की कामना क्या है, दया। बिना दया के जब तक कल्याण की कामना नहीं होगी, दया का भाव नहीं होगा, तब तक प्रचार उतना असरदारक नहीं होगा। तो हमें पूछना चाहिए, एक हमारे वर्तमान आचार्य लिखते हैं एक चर्चा में, डिस्कशन में, कि हमें अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न, क्या मैं प्रचारक हूं? मैं इस प्रचार महाप्रभु के आंदोलन में हूं तो क्या मैं प्रचारक हूं? मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? मेरे प्रचार करने का उद्देश्य क्या है? और क्या मैं प्रचार करने के लिए पूरी तरह से कन्विंस हूं, या बस सिर्फ मेरे को बोला गया तो मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं? मेरा अपना क्या अनुभव है? मेरा अपना कोई रिएक्शन है कि नहीं, कि हां मेरे को प्रचार करना है, मेरे को कोई अनुभूति नहीं हो रही प्रचार करने के, बस मेरे को बोला इसलिए कर रहे हैं, तो वो हाफ हार्टेडली रहेगा। हमारा अपना भी कुछ अनुभव होना चाहिए, गुरु से सुन के, शास्त्रों से पढ़ के, सुन के, भक्तों को देख करके, कुछ हमारा अपना अनुभव, कुछ हमारे को क्या रिलाइज होना चाहिए कि हाँ प्रचार करना कितना आवश्यक है, ये कन्विक्शन आनी चाहिए। और ये प्रश्न जो है बार बार पूछने चाहिए, एक बार पूछने से इनका उत्तर नहीं मिलता। और यदि प्रश्न हम बार बार नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, ढीलापन आ जाएगा, कंप्लेसेंट हो जाएंगे हम। तो क्या हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं? पूछना चाहिए प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं। जो प्रभुपाद हमसे चाहते हैं क्या बिल्कुल वैसे मैं कर रहा हूं, जो वैसे करने का प्रयास कर रहा हूं है? क्या प्रभुपाद का जो आदेश है प्रचार करने का मैं उसको ठीक से निभा पा रहा हूं है? तो ये हमारे को पूछना चाहिए। कौन है प्रीचर? जैसे हम बताया प्रीचर वो है जो किसी तरह से भी किसी दूसरे व्यक्ति को कृष्ण की ओर आगे बढ़ने में मदद करें, कृष्ण के बारे में बताए, कृष्ण से मिलाए, पुस्तक दीजिए, प्रसाद दीजिए, हरि नाम मंदिर लाइए, किसी भी तरीके से कृष्णा भावना अमृत से जोड़ना, कृष्णा भावना अमृत उसके अंदर जागृत करना चाहिए। इतना से सही शुरुआत तो थोड़े से सही होती है। तो वो प्रीचर है, कई तरीके हैं करीब लाने के। जैसे बताया कि एक व्यक्ति बिल्कुल एक्टिव प्रीचर है, फ्रंट लाइन प्रीचर, पर एक व्यक्ति ऐसे भी सकता है जो कि कुछ नहीं बोलता लेकिन बड़ा अच्छा प्रचार करता है। पुजारी हैं वो ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं, भगवान को इतने अच्छे डेकोरेट करते हैं कि लोग आकर्षित होते हैं। बहुत से लोग केवल दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं। इस्कॉन मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के, ये सब लोग जानते हैं संसार में, तो कल दर्शन करने के लिए आते हैं तो प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये प्रचार है कि नहीं है? एक दर्शन करने के लिए आ रहा है तो कृष्ण की ओर बढ़ रहा है कि नहीं? तो प्रचार है। पुजारी भी प्रचार कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, प्रसादम में कितना आकर्षण है, तो कुकिंग व्यक्ति जो कर रहा है कुक वो भी प्रचारक है। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट चला रहा है, जैसे हमारे यहां गोविंदा रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे कृष्णा भावना अमृत का वातावरण है, सुस्वादु प्रसादम है। व्यक्ति मान लीजिए कोई अभक्त भी जो कि भक्ति से नहीं जुड़ा हो, वहां पे कोई किसी कोई कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आता है फंक्शन, तो वहां पे वो जितनी देर अपना प्रसाद पाता है भोजन करता है तो वो प्रभावित होता है कि कितना अच्छा वातावरण है। तो जो रेस्टोरेंट चला रहा है वही प्रचार कर रहा है एक तरीके से। कोई व्यक्ति फार्म कमेटी में रहता है, वो फार्म कमेटी में रहता है तो प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारता है, तो वहां विजिटर आते हैं वो देखते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक तरीके से प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन के माध्यम से, कुछ नहीं बोल रहा लेकिन वो जीवन इस तरह से जी रहा है कि लोग उसको देख के प्रभावित हो रहे हैं। क्या कितना बढ़िया जीवन है इनका, कितना अच्छा सात्विक सुंदर है, तो लोग प्रभावित होते हैं। तो जितने तरह के लोग हैं संस्था में उतने तरह के प्रचारक हैं। और एक बार ऐसे हमने सुना कि इस्कॉन संस्था में हर व्यक्ति प्रचारक है, तो इस प्रचार के भाव को विकसित करना चाहिए। जितना अधिक हमारा प्रचार का भाव होगा उतना हमारी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति होगी, उतना ज्यादा हम कृष्ण को समझने में हमें सहायता मिलेगी। और ये किसी आयु पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम देख रहे हैं यहां पे प्रहलाद महाराज, उनके सपाटी 5 वर्ष की आयु है लगभग, तो प्रहलाद महाराज ने तो माता के गर्भ में सुन लिया था, तो उन्होंने 5 वर्ष की आयु में प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार करने के लिए वो अभी गए नहीं नाराजी, पूछ नाराजी मैं प्रचार करूं कि नहीं करूं, उन्होंने शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, ये जीव का स्वभाव है, भक्त का स्वभाव है विशेष रूप से। और प्रहलाद महाराज तो मां भागवत है। और प्रचारक को बड़ा गंभीर भी होना चाहिए। जैसे खेल खिलौने से खेल रहा व्यक्ति कोई, तो वो उसका प्रचार वो कैसे प्रचार करेगा? प्रहलाद महाराज अगर खेल खिलौने से खेलते हैं, पहले खेलते हैं आधा घंटा फिर प्रचार करेंगे, तो फिर वो नहीं बात बनेगी बनेगी ही तो प्रचारक को बहुत गंभीर होना चाहिए। क्यों गंभीर होना चाहिए? ताकि आकर्षण लोगों में पैदा हो, ताकि उसकी बात सुने। तो यहां बता रहे हैं कि बालक जो थे बड़े अबोध थे, अपने पिता के समान दूषित नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सारे बालकों के पिता दूषित ही होते हैं, तो यहां विशेष रूप से इसलिए बोला गया है क्योंकि वो असुरों के बालक थे, तो उनके पिता तो असुर थे सभी, है ना, और हिरण्यकश्यपु का राज्य था। लेकिन बालक क्योंकि अभी अबोध थे, उनकी आयु कम थी, तो वो अभी उतने दूषित नहीं हुए थे जितने कि उनके पिता लोग थे। तो उसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि सबके पिता अधिक दूषित होते हैं और बालक कम दूषित होते हैं। निश्चित रूप से बालक जो है बहुत होते हैं, ना समझ होते हैं, इनोसेंट, लेकिन क्योंकि यहां असुरों के बालकों की बात हो रही है तो इसलिए यहां ऐसा बोला गया है कि वो अपने पिता से कम दूषित थे। तो ये जो अबोधता है, इनोसेंस, ये बहुत जरूरी है भक्ति में, यानी कि सरलता। जो सरलता ही वैष्णवता है। छल कपट का कोई स्थान नहीं है भक्ति में। छल कपट करना, ये जो कूटनीति जैसे बोलते हैं कई बार, इसका कोई स्थान नहीं भक्ति में। जितना व्यक्ति सरल होगा उतना ज्यादा आगे भक्ति में आगे बढ़ेगा। धोखा देना देखिए पाप है, लेकिन धोखा खाना पाप नहीं है। ठीक है जी, मैं इतना सरल रहूंगा तो मुझे लोग, तो क्या हो गया? अगर आप किसी ने धोखा दे भी दिया तो आप कुछ भक्ति में फर्क आने वाला नहीं है, लेकिन धोखा देना जो है उससे हमारी भक्ति में असर पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को बड़ा सरल होना चाहिए। जो सरल होगा वो जल्दी भक्ति में पक्ति कर सकता है। जैसे यहाँ बालक जो है बोध हैं, सरल हैं, तो वो अपने खेल खिलौने छोड़ के वो भी प्रहलाद महाराज के चारों ओर बैठ गए सुनने के लिए। ये सुनने की जो इच्छा है ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। यदि सुनने की इच्छा नहीं है तो शुरुआत ही नहीं हो सकती, कैसे होगी फिर? तो इनडायरेक्टली अज्ञा स्वीकृति, कभी कुछ सेवा होगी, कभी पता नहीं कब, बहुत लंबा रास्ता है। फिर सुनने की इच्छा है भक्तों में, इनमें बालकों में, तो ये बहुत अच्छा गुण है उनका। तो प्रहलाद महाराज उनको सुना रहे हैं और क्या बता रहे हैं, भौतिक जीवन की व्यर्थता और आध्यात्मिक जीवन की सारता। गुरुपत कह रहे हैं एक प्रवचन में, कुंती मरहानी की शिक्षाओं के ऊपर प्रवचन है, तो उसमें बता रहे हैं कि सारी प्रभु कहते हैं सारा जो संसार है वो केवल ये ब्रेड प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा है, है? कि किस प्रकार से मेरे को मेरा भोजन मिले। प्रभुपद बहुत रिपीट करते हैं इस लाइन को, गिव मी माई डेली ब्रेड, है ना। लोग जाते हैं मंदिरों में, चर्च में, कि मुझे बस मेरा किस तरह से मेरा ये भरण पोषण होता रहे। तो वो कह रहे हैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि उनकी बात सुन के हो सकता है आप लोगों को बड़ी हैरानी हो कि क्या बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भगवान तो देखिए हाथी को भी खाना देते हैं और चींटी को भी देते हैं भोजन, मिल रहा है ना। अफ्रीका में वो कह रहे हैं इतने सैकड़ों हजारों हाथी हैं, सबको भोजन मिलता है भर पेट, और चींटी को भी मिलता है। तो इसकी व्यवस्था तो भगवान ने पहले से की हुई है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जिम्मा भगवान ने लिया हुआ है, तो हमें सारा अपना प्रयास करना चाहिए केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला उसी के लिए। बाकी जो चार कार्य जो करते हैं मुख्य रूप से, वो तो 84 लाख योनि में किसी भी योनि में हो सकता है, बल्कि मनुष्य के अलावा बाकी योनियों में वो चार कार्य करने बड़े आसान हैं और सुलभ हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास ज्यादा बुद्धि मिली है और फिर भी उसको ये चार काम करने के लिए जानवर से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो ज्यादा बुद्धि मिली है ये चार काम करने के लिए नहीं मिली। इस चार काम के अलावा कोई और पर्पज है जिसके लिए भगवान ने हमारे को ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, विकसित बुद्धि प्रदान की है, और वो आध्यात्मिक उन्नति, तो केवल उसी में लगना चाहिए। बाकी जो आवश्यकताएं हैं वो स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। उसके लिए विशेष अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो यहां बता रहे हैं धर्म अर्थ और काम के विषय में, इसके बारे में कोई आवश्यकता नहीं है अलग से कोई प्रयास करने की। केवल हमारे को आध्यात्मिक जीवन कृष्ण की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए बस, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल होगा मनुष्य जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला केवल उसी के लिए। तो भौतिक जीवन तो व्यर्थ है। प्रचार का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को यह बताना कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का कंट्रास्ट क्या है, क्या अंतर है। जैसे बांस और गन्ना, बांस गन्ना दोनों देखने में जैसे होते हैं, लेकिन बांस में कोई रस नहीं है। यदि रस चाहिए तो गन्ना चूसना पड़ेगा। इस प्रकार से भौतिक जीवन में कोई रस नहीं है। ये सब जितना अधिक भौतिकतावादी जीवन होगा उतना अधिक दुख प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जितना भौतिकतावादी जीवन को कम करेंगे उतना हमारे को जो है शाश्वत सुख की ओर हम बढ़ेंगे, कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए जैसे बताया कि श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस को अपनाना चाहिए। ये भौतिकतावादी जीवन को छोड़ करके हमें श्रेयस की ओर बढ़ना चाहिए, उसी को तपस्या बोलते हैं, तपोदिव्यम। भगवान की ओर बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए इन भौतिकतावादी जीवन शैली को त्यागना, उसको वो जो तपस्या करनी चाहिए, उससे हमारे को आगे जाके शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और यहां पे दोनों बातें हैं, प्रचार करना भी चाहिए और जिस प्रकार से वो बालक सुन रहे हैं तो सुनना भी चाहिए, यानी प्रचार करना भी और प्रचार ग्रहण भी करना है। भक्त के जीवन में दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। ऐसे नहीं कि अभी मैं प्रचार करना शुरू कर दिया तो अभी मुझे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हो गया, तो फिर उसी समय खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो जिस प्रकार से बालक सुन रहे हैं तो इस प्रकार सुनने की इच्छा भी होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, या जो भौतिकवादी लोग हैं उनको एक बार सीख दी जाए तो अच्छी नहीं लगती। भक्ति सिद्धांत बता रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी कथा के माध्यम सुना रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ऊपर छत पे पतंग उड़ा रहा है, बच्चा लड़के कुछ, और छत के चारों ओर दीवार नहीं है, पैरापिट वॉल बोलते हैं ना, या मुंडेर बोलते हैं, मुझे पता नहीं और भी कुछ शब्द होता होगा, छत के चारों ओर जो दीवार होती है रोकने के लिए, पैरापिट वॉल है ना, जैसे ये टेबल है ना, ऐसे खाली छत है, शायद में दीवार नहीं है, उस पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है लड़का, और पतंग उड़ाते उड़ाते इतना उसमें मगन हो गया है कि वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया है, बस अभी गिरा या अभी गिरा। और बाकी जो लड़के हैं वो तो कहते हैं पतंग उड़ाते तो बाकी गिरते हो करते हैं, हो ये है शुरू हो जाते हैं, वो उसको मतलब एनकरेज कर रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए, वो गिरने वाला है उस पर ध्यान नहीं किसी का। तो एक समझदार व्यक्ति नीचे जा रहा था, उसने देखा वो ये तो लड़का गिरने वाला है, तो फौरन से ऊपर गया, उसको खींचा, उसकी पतंग वतंग सब तोड़ के फेंक दी, और उसका वो जो धागा भागा था सब लेके घर आ गया। तो बोले वो उसको गाली दे रहे हैं, लड़के जो थे सारे वो उसे लड़ रहे हैं, ये तो चोर है, गुंडा है, बदमाश है, हैं, और अपने माता पिता से शिकायत कर दी, उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी, ये देखो हमारे बच्चों का सामान छीन के ले गया। तो ये भौतिकतावादी जीवन जो है, भौतिकवादी जो लोग हैं उनका ये हाल है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति दयालु है वो अपना कार्य नहीं छोड़ता, वो तो दया करता ही है, फिर भी दया करने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसलिए जब हमारे को कुछ भी शास्त्र से या गुरु से या भक्तों से जब सुनने को मिलता है तो उसको हमें बड़े ध्यानपूर्वक उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार हो सकता है कि उनको संदेश समझ में ना आए। एक और कथा है बड़ी छोटी सी, भक्ति नाथी बताते हैं। एक बार एक राजा था, तो राजा ने अपने राजकुमार राजकुमारियों के मन भलाने के लिए बहुत सारे बंदर पाल लिए अपने महल में। तो वो बंदर से उसके राजकुमार खेलते थे, तो उन बंदरों का एक लीडर था जो थोड़ा अनुभवी था, और ऐसे लिख रहे हैं भक्ति नंदा जी कि वो उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, जैसे कि शुक्राचार्य और बृहस्पति ऐसे लिख रहे हैं। और उसी महल में कुछ भेड़ भी रहती थी, भेड़ होती है ना, जिसमें से ऊन निकलती है, बड़े बाल होते हैं शरीर में, वो भेड़ खाने की बहुत शौकीन थी, तो अक्सर जो है राजमहल की रसोई में घुस जाती थी भेड़, और रसोईया उनको मार के भगाता था। और ये अक्सर हर दूसरे दिन ये इस तरह का घटना होती थी, और बूढ़ा बंदर देखता था कि ये भेड़ जो है ये रोज ही इनका रसोई से झगड़ा होता है, ये भेड़ खाने की लालच में रसोई घर में घुस जाती है, और रसोईया जो है जो हाथ में आता है वो उठा के मारता है इसको, और कहता है ना हो एक दिन अगर इसने जलती हुई लकड़ी इस भेड़ को मार दी, वो बंदर सोच रहा है जो उनका लीडर है, तो इस भेड़ के शरीर पे तो बाल ही बाल है, इस भेड़ को आग लग जाएगी, और अगर बाई चांस ये भेड़ जो है जलती हुई भेड़ घोड़ों के अस्तबल में घुस गई तो वहां तो भूसा ही भूसा होता है, उसमें आग लग जाएगी पूरे अस्तबल में और घोड़े जल जाएंगे। और उस समय एक बहुत बड़ा हकीम था उस समय प्रचलन में, और उस हकीम ने एक नुस्खा दिया था घोड़ों के जलने के इलाज के लिए, और उस नुस्खे के अनुसार घोड़ों जले हुए घोड़ों का इलाज जो था वो बंदर की चर्बी से होता था। तो वो जो बूढ़ा बंदर था, मतलब ये तो बहुत खतरनाक काम है, इस महल में रहना तो बहुत खतरा है। तो उसने बूढ़े बंदर ने सारे बंदरों को एकत्र किया, उसने बोला देखो भाई ऐसे महल में रहना जहां पर रसोई और भेड़ की रोज झगड़ा होता हो वो हमारी जान के लिए खतरा है, इसलिए हमें इसको छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए। बंदर बोले क्या अनाप शनाप बात करता है, कुछ सिर पैर ही नहीं है, जहां रसोई और भेड़ झगड़ा होता हमारा क्या मतलब है, रसोई और भेड़ झगड़ा हो रहा तो हमारी जान खतरा कैसे है। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। बंदर का देखो भाई मैं आप लोगों को मरते भी नहीं दे सकता, तो आप मेरे साथ चलो, अगर आप नहीं चलते नहीं बात मानते तो मैं तो जा रहा हूं। तो बूढ़ा बंदर चला गया। वो बंदर कहते हमको जाए, यहां देखो राजकुमारों के साथ खेल रहे हैं, जो वो खाते हैं हम भी खाते हैं, कितना आनंद आ रहा है ना, हम क्यों जाएं? उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, समझ में नहीं आई ना। वही हुआ एक दिन, भेड़ तो रोज जाती थी रसोई घर में, एक दिन रसोइये ने वो जलती लकड़ी दे मारी उसको और वो भेड़ को उसके शरीर में तो सारे बाल होते हैं, उसको आग लग गई और वो जल रही थी तो वो भागते भागते अस्तबल में घुस गई, अस्तबल में भूसा होता है उसमें आग लग गई, घोड़े जल गए। राजा ने बुलाया वैद्य को भी, इनका इलाज करो। वैद्य ने वही नुस्खा बताया कि जी इनका इलाज तो जो है वो बंदरों की चर्बी से ही होगा। केवल राजा ने आदेश दे दिया सारे बंदरों को मार दिया जाए और उनकी चर्बी निकाल के, क्योंकि घोड़े ज्यादा कीमती है बंदरों से। तो इससे ही समझते हैं कि कई बार हमें शास्त्रों के आदेश, गुरु के आदेश, वो हमारी भौतिकता, हमारी भौतिक शक्ति पर चोट करेंगे, हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन वो हमारे हित के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कल्याण के लिए बोले जा रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए। ये भौतिक वाले जीवन ऐसे ही जैसे कि वो बिना दीवार वाली छत के ऊपर पतंग उड़ाना, कभी भी गिर सकते हैं, मृत्यु का डेथ ट्रैप है ये, है ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है किसी भी समय। और यदि कोई दया करके हमारे को जो है आध्यात्मिक जीवन का रास्ता दिखाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये मार्गदर्शन हमेशा, जब तक हम इस संसार में, भौतिक संसार में हैं, तब तक जब तक शरीर है, हमें इस मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। किसी अवस्था में आकर के व्यक्ति को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अभी मुझे तो आवश्यकता नहीं है मार्गदर्शन की, मैं अपने गुरु से ज्यादा समझदार हो गया, या मुझे शास्त्र, मैं तो पढ़ लिए सारे शास्त्र। तो ये हमेशा ये मार्गदर्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही खतरनाक स्थान में रह रहे हैं इस भौतिक संसार में। पदम पदम यद विपदाम हितेशम। तो हमें हर समय मार्गदर्शन की सकता है, लेकिन साथ ही साथ मार्गदर्शन लेना भी है और फिर आगे देना भी है। दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। ये पैकेज डील है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, है ना, दोनों साथ साथ, अपना जीवन भी सार्थक करना है और आगे दूसरों का मार्गदर्शन भी करना है। भगवान की सेवा समझते हुए, विनम्र रहते हुए, बॉस मान करके प्रचार नहीं होता कभी भी, सेवक समझ करके प्रचार होता है। दया की भावना तभी जागृत होती है, ये समझ कर कि मैं गुरु का सेवक कर रहा हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, योग्यता थोड़ी बहुत है भी, वो भी गुरु ने दी है, मैं उनका सेवक कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, है ना। और प्रचार में पूरा पक्का विश्वास, कन्विक्शन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम कृष्णा भावामृत को लेंगे और चलेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, और फिर सफलता की निश्चित गारंटी है, प्रभुपाद कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यही मनुष्य जीवन है, वरना तो 84 लाख योनियां हैं, फिर किसी भी योनि में रहने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं, समय भी हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका कोई प्रश्न है या कुछ आप कुछ बताना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, तो आपका स्वागत है।